डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रॉ, पास्टोरल एपिस्टल्स, सत्र 12। तीतुस और तीतुस का परिचय एक। 2024 रॉबर्ट यारब्रॉ और टेड हिल्डेब्रांट। ये है डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रॉ, देहाती पत्रियों पर अपने शिक्षण में देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश। यह सत्र 12 है। टाइटस का परिचय, टाइटस एक। हम देहाती पत्रों का अपना अध्ययन जारी रखते हैं और मैं इसे देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश कह रहा हूँ। हम टाइटस का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और जैसे ही हम शुरू करेंगे मैं टाइटस के प्रमुख अंशों में से एक को पढ़ना चाहता हूँ। यह परिच्छेद बहुत ही व्यावहारिक चीज को जोड़ता है, हम अन्य लोगों को कैसे देखते हैं, लेकिन यह उस धर्मशास्त्र की एक झलक भी देता है जो टाइटस की पुस्तक को रेखांकित करता है, क्योंकि टाइटस के पास क्रेते की स्थिति और क्रेते के द्वीप पर लोगों के बारे में बहुत व्यावहारिक सलाह और टिप्पणियां हैं। यह आपको शायद यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि यह धार्मिक रूप से कमजोर है और यह मुख्य रूप से रसद या लोगों को संभालना है, लेकिन यहाँ हम इस संयोजन को देखते हैं कि हम लोगों को कैसे मानते हैं और भगवान लोगों को कैसे मानते हैं और लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए भगवान ने क्या किया है। और इसलिए हम पढ़ते हैं, एक समय में हम भी मूर्ख, अवज्ञाकारी, धोखेबाज और सभी प्रकार के जुनून और सुखों के गुलाम थे। यह प्रेरित पौलुस द्वारा तीतुस को लिखा गया पत्र है। हम द्वेष और ईर्ष्या में रहते थे, नफरत करते थे और एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन जब हमारे उद्धारकर्ता भगवान की दया और प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमें बचाया। हमारे द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों के कारण नहीं, बल्कि उसकी दया के कारण। उसने हमें पुनर्जन्म की धुलाई और पवित्र आत्मा द्वारा नवीकरण के माध्यम से बचाया, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से उदारतापूर्वक हम पर उंडेला, ताकि उसकी कृपा से न्यायसंगत होकर हम अनंत जीवन की आशा वाले उत्तराधिकारी बन सकें। यह एक विश्वसनीय कहावत है। आइए टाइटस पर इन व्याख्यानों पर भगवान का आशीर्वाद मांगे। स्वर्गीय पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जीवन में हमारी प्रारंभिक गलतियों के बावजूद, पाप में जन्म लेने के बावजूद और स्वेच्छा से पापी होने के बावजूद हमारे उद्धारकर्ता भगवान, आपकी दया आपके बेटे में दिखाई दी। उस शब्द के लिए धन्यवाद जो दुनिया में आया है और जिसने बहुतों को बचाया है, और धन्यवाद कि वह शब्द हमारे पास आया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उस शब्द को इन व्याख्यानों में गूंजने देंगे और वह अनुग्रह जो हमें अभी मिला है, इसके बारे में पढ़ना हम सभी के जीवन में आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद कि यह आपके सभी शब्दों की तरह एक भरोसेमंद कहावत है, और जैसे जैसे हमारा अध्ययन जारी रहेगा हम स्वयं को आपके अच्छे हाथों में सौंपते हैं। हम यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो विशेष रूप से टाइटस के लिए परिचय के कुछ नोट्स और एक तिमोथी के तहत व्याख्यान एक में मैं देहाती पत्रों और लेखकत्व के मुद्दों आदि के बारे में अधिक बात करता हूँ, लेकिन टाइटस के बारे में अधिक विशेष रूप से हम पद्य में टाइटस के उद्देश्य को देखते हैं। 5। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें क्रेते में इसलिए छोड़ दिया कि जो कुछ अधूरा रह गया था उसे तुम सुधारो और मेरी आज्ञा के अनुसार हर नगर में पुरनियों को नियुक्त करो। और पॉल इस पत्र में टाइटस को प्रोत्साहित करना और उसे और अधिक गहराई से स्थापित करना चाहता है, क्योंकि इस स्थिति में जहां उसे नेताओं को नियुक्त करने और नेताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, हम पाते हैं कि समस्याएं हैं। वहां ऐसे लोग हैं, जैसा कि हम अध्याय 1 के श्लोक 16 में पढ़ते हैं, जो चर्च में और उसके आसपास ईश्वर को जानने का दावा करते हैं, जो एक अच्छी बात लगती है, लेकिन पॉल कहते हैं कि अपने कार्यों से वे उसे नकारते हैं। वे घृणित, अवज्ञाकारी और कुछ भी अच्छा करने के लिए अयोग्य हैं। इसलिए पॉल इस आवश्यकता को संबोधित करना चाहता है और क्रेते में मौजूद समस्याग्रस्त तत्वों को भी संबोधित करना चाहता है। पॉल की चिंताओं को इस तरह संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, मैं सभी छंद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं वास्तव में सभी पत्र पढ़ूंगा और मैं एक मिनट में ऐसा करूंगा, लेकिन वह चाहता है कि ईसाई नेता कड़े मानकों को पूरा करें। यदि आप सेना के बारे में सोचते हैं तो मजबूत उपसमूह बनाने के लिए, यदि आप मजबूत लड़ाकू इकाइयां चाहते हैं तो आपके पास अच्छे अधिकारी होने चाहिए। और प्राथमिक विद्यालय में यदि आप चाहते हैं कि बच्चे अच्छी तरह सीखें तो आपको शिक्षकों की एक बेहतरीन टीम की आवश्यकता है। खैर, चर्च में भी ऐसा ही है। आपको अपने नेताओं के लिए उच्च मानकों की आवश्यकता है और इसलिए टाइटस की पुस्तक जो चीजें करती है उनमें से एक यह है कि चर्च में नेतृत्व के लिए हमें किस प्रकार के गुणों की आवश्यकता है। और निःसंदेह यह एक तीमुथियुस अध्याय 3 के समानांतर है। एक और चिंता यह है कि ईसाई शिक्षण ईसाई की चेतना को प्रभावित करता है, ईसाई चेतना और व्यवहार में व्याप्त है ताकि भगवान के वचन का अनादर न हो। और मैं आपकी स्क्रीन पर मौजूद सभी शब्दों को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हम अध्याय 2 में देखेंगे कि सभी आयु समूहों और दोनों लिंगों को विशेष रूप से संबोधित किया गया है और टाइटस को टाइटस और उन लोगों को याद दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें वह ईसाई मन और ईसाई जीवन के परिवर्तन की आवश्यकता को प्रशिक्षित करता है, न कि केवल एक धार्मिक आवरण या ऐसे लोगों के लिए जो ईश्वर में विश्वास करते हैं और चर्च जाते हैं, बल्कि इसलिए कि बहुत ही मौलिक स्तर पर ईश्वर का वचन होगा उन लोगों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है जिन पर वास्तव में उस वचन का दावा किया जा रहा है। और मैं इस पर टिप्पणी करता हूं कि विद्वता ने कैसे इसका इन व्यावहारिक चिंताओं का लाभ उठाया है। इसका मतलब यह है कि टाइटस में देहाती पत्र वे हैं जिन्हें हम घरेलू दस्तावेज कह सकते हैं। वे ऐसे व्यवहार स्थापित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो ईसाइयों को संस्कृति के अनुरूप बनाएंगे ताकि वे इसमें फिट हो जाएं और स्वीकार किए जाएं और अस्वीकार न किए जाएं। और जब हम पॉल जो कहते हैं उसके आधार और वह जिस व्यवहार के लिए आग्रह करता है दोनों का अध्ययन करते हैं तो यह वास्तव में संस्कृति के अनुरूप नहीं है। और कभी कभी हम घरेलू संहिता शब्द को सुनेंगे और कहेंगे ठीक है, ये घरेलू नियम हैं और इनका उद्देश्य ईसाइयों को समाज में फिट बनाना है। और नंबर एक, मुझे नहीं लगता कि घरेलू कोड जैसी कोई चीज होती थी। मुझे लगता है कि यह नए नियम के अध्ययन का एक मिथक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने वास्तव में अध्याय 2 की दोनों दिशाओं और मसीह में उनके आधार, अवतार और क्रूसीकरण और पुनर्जन्म की धुलाई और इन सभी चीजों का अध्ययन किया है तो हम क्रांतिकारी जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। हम ऐसी किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो ग्रीको रोमन दुनिया में देखना सामान्य था। एक और चिंता यह है कि ईसा मसीह के पहले आगमन की कृपा क्रांतिकारी जीवन को प्रेरित करती है और यह भी कि चर्च की पुराने नियम की विरासत, भगवान के लोगों के रूप में इसकी पहचान और चर्च की युगांतिक नियति, ये सभी चीजें मिलकर लोगों के जीने के तरीके को बदल देती हैं। तौर तरीकों, एक और चिंता, और हमने अभी इसे पढ़ा है, वह यह है कि ईसाई सामाजिक रूप से संलग्न होंगे और अन्य लोगों के प्रति विचारशील होंगे क्योंकि वे अपनी पूर्व पुनर्जीवित स्थिति के बारे में जानते हैं और वे जानते हैं कि वे ईश्वर की दया के कितने अयोग्य हैं। और इसलिए वे अहंकारी नहीं हैं या वे इधर उधर नहीं घूमते हैं और ऐसा महसूस नहीं करते हैं कि वे अन्य लोगों की तुलना में बेहतर हैं, भले ही वे अलग तरह से रह रहे हों, लेकिन उनमें श्रेष्ठता की भावना नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि क्या वे जीवित हैं अलग ढंग से, और यदि वे अलग अलग तरीकों से रह रहे हैं जैसा कि आप कह सकते हैं तो यह इन बुरे तरीकों से बेहतर है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो उनकी योग्यता पर आधारित हो। यह ईश्वर और उसकी दया और उसे मसीह में जो कुछ दिया गया है उस पर आधारित है। ईसाइयों के लिए एक और चिंता व्यर्थ विवाद से बचने की है। यीशु ने कहा, धन्य हैं शांति स्थापित करने वाले, विवाद करने वाले नहीं। और जबकि बिंदुओं पर संघर्ष की आवश्यकता है, न कि बेकार संघर्ष या बेकार विवाद की, पॉल उससे बचना चाहता है और टाइटस को रखना चाहता है और ईसाई नेताओं को अनुत्पादक वाद विवाद में फंसने से बचाना चाहता है। और अंत में हम टाइटस में ईसाइयों के लिए कार्यशील लोग बनने, परिवर्तित व्यवहार वाले लोग बनने का आह्वान देखते हैं। और इस पर इतना जोर दिया गया है कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या यह एक गैर विरोधी सामाजिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है, जो कि समाज में अराजक होने की प्रवृत्ति है और वहां नियम या पुलिस व्यवस्था पसंद नहीं है। और हम आगे बढ़ते हुए उस पर चर्चा करेंगे। या क्या व्यवहार पर इतना अधिक तनाव है क्योंकि चर्च में बाहर खड़े होने और बहिष्कार का सामना करने का डर है? यदि आप एक ईसाई की तरह रहते हैं तो लोग इसे पहचान लेंगे और शायद इसके लिए आपको दंडित करेंगे। कुछ कारण हैं कि अच्छे कार्यों का यह आह्वान, जीवन को बदलने का यह आह्वान टाइटस की पुस्तक में इतना प्रमुख है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसका पता लगाएंगे। टाइटस कहाँ है? खैर, टीतुस क्रेते पर है। और क्रेते कहाँ है? और अगर हम अपने भरोसेमंद गूगल मानचित्र को देखें तो हमें भूमध्य सागर का एक मानचित्र दिखाई देगा। मैं करीब आ रहा हूं। और यही क्रेते हैं। अब यह ग्रीक गूगल है क्योंकि ग्रीस वहां ऊपर है, तुर्की वहां है और इटली वहां है और रोम वहां है। और यह भूमध्य सागर में स्थित द्वीप है जिसके उत्तर में एजियन सागर है और इसके चारों ओर भूमध्य सागर है। और फिर यहां नीचे यह उत्तरी अफ्रीका है। क्रेते वही था और टीतुस वही था। वह द्वीप 3000 वर्ग मील से अधिक का है और मानचित्र पर बहुत छोटा दिखता है, लेकिन आज इसमें केवल 10 लाख से कम लोग रहते हैं। यह बहुत सारे लोग हैं। क्रेते में मोंटाना राज्य की तुलना में अधिक लोग हैं, जो एक बहुत बड़ा राज्य है। यह प्राचीन मिनोअन सभ्यता का घर था और ग्रीक पौराणिक कथाओं में क्रेते को राजा मिनोस और उस भूलभुलिया से जोड़ा गया था जहां मिनोटौर था और थेसियस ने हत्या की थी। तो यह ग्रीक ग्रीको-रोमन मानसिकता में एक ऐतिहासिक स्थान था। पुराने नियम में क्रेते को ड्यूटेरोनोमी और यिर्मयाह में कप्तोर के साथ जोड़ा गया है। आमोस इसे पलिश्तियों की उत्पत्ति की भूमि कहता है, जो सच हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमने आमोस में यही सीखा है। इसलिए यह द्वीप सांस्कृतिक संघों और पहचान में समृद्ध था। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इस पर रोम ने कब्जा कर लिया था और रोमनों ने क्रेते पर उत्तरी अफ्रीका से शासन किया था, इसलिए यह उत्तरी अफ्रीकी प्रशासनिक क्षेत्र का हिस्सा था। प्रश्न उठता है कि क्रीट में ईसाई क्या कर रहे थे? यीशु क्रेते नहीं गए और हमारे पास वहां चर्च स्थापित होने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन जाहिर है वहां चर्च है। और पिछली शताब्दी में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रारंभिक ईसाई मिशन पर सबसे बड़ा काम एक हार्ट श्नाबेल द्वारा लिखित द लास्ट जेनरेशन में दिखाई दिया है। दो मोटे खंडों को अर्ली क्रिश्चियन मिशन कहा जाता है और खंड दो को पॉल एंड द अर्ली चर्च कहा जाता है। उस खंड के पृष्ठ 1284 पर डॉक्टर श्नाबेल लिखते हैं कि क्रेते पर बड़े यहूदी समुदाय थे और यह पहली सदी में निस्संदेह सच है। और हम प्रेरितों के काम से जानते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में क्रेते के तीर्थयात्री थे। अधिनियम 2:11 हमें यह बताता है। और इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कुछ व्यक्ति यहूदी हो सकते थे, वे यहूदी धर्म में परिवर्तित हो सकते थे या वे दोनों एक हो सकते थे, और वे पेंटेकोस्ट के पर्व के लिए यरूशलेम में थे और वे ईसाई संदेश को अपने साथ क्रेते वापस ले जा सकते थे। उस स्थिति में क्रेते द्वीप पर चर्च 30 ईस्वी के आरंभ में या 30 ईस्वी के मध्य में शुरू हो सकते थे। एक अन्य विकल्प और डॉक्टर श्नाबेल भी इसका सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि क्रेते के लिए एक मिशन प्रारंभिक यहूदी ईसाई मिशनरियों के लिए एक तार्किक परियोजना रही होगी, यहूदी जो पेंटेकोस्ट के समय और उसके बाद यरूशलेम में परिवर्तित हुए थे। वे क्रेते जा सकते थे और क्रेते में आराधनालय थे और वे सभाघरों में जा सकते थे और खुशखबरी की घोषणा कर सकते थे कि मसीहा आया था। और फिर हम 30 या 40 के दशक के उत्तरार्ध के चर्च की कल्पना कर सकते हैं। एक और सुझाव यह है कि 50 के दशक के अंत में प्रेरितों के काम 27 में पहली बार रोम जाते समय क्रेते में पॉल की गवाही, उस गवाह ने एक भ्रूणीय चर्च का गठन किया हो सकता था। और फिर जब पॉल को रोमन कारावास से रिहा किया गया तो वह अपनी रिहाई पर उस चर्च को और अधिक मजबूती से स्थापित करने की कामना कर सकता था। और इसलिए पॉल, यदि वह अपने पहले रोमन कारावास से लगभग 63 ईस्वी में मुक्त हो गया था, तो द्वीप का दौरा कर सकता था, इसकी जरूरतों का जायजा ले सकता था और क्रेते में काम का विस्तार करने के लिए टाइटस को वहीं छोड़ सकता था, जबकि पॉल पश्चिमी में निकोपोलिस की यात्रा पर था। ग्रीस, जैसा कि वह टाइटस 3:13 में कहता है, इसलिए हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास चर्चों की स्थापना का सुरक्षित ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर पॉल पादरियों की स्थापना के उद्देश्य से 60 के दशक में टाइटस को लिख रहा है तो यह असंभव लग सकता है कि चर्च पहले से ही एक दशक या उससे अधिक समय से अस्तित्व में रहा होगा, क्योंकि चर्चों की स्थापना के साथ ही बुजुर्गों को प्रशिक्षण देना और नियुक्त करना भी उन चीजों में से एक है जो होता है। और हम देख सकते हैं कि अधिनियम 14:23 में पहली मिशनरी यात्रा के अंत में वे सेल समूह स्थापित करते हैं, और एक बार जब उन्हें एहसास होता है, ठीक है, हमारे पास ये समूह हैं, तो उन्होंने बुजुर्गों को नियुक्त किया। इसलिए पॉल के लेखन के बहुत कम वर्षों के भीतर अज्ञात तरीकों से स्थापना प्रशंसनीय है। अब यहाँ एक और विकल्प है। जब पॉल और टाइटस इससे जुड़े थे तब तक यह चर्च 30 साल पुराना हो चुका था, लेकिन इसके स्थापित होने के बाद यह स्थिर हो गया होगा। इस परिदृश्य में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर यह इतनी गंभीर रूप से खराब हो गई कि पॉल ने एक नई शुरुआत करने या उन सच्चाइयों के लिए उत्साह को नवीनीकृत करने के लिए टाइटस को भर्ती करना जरूरी समझा, जिनके साथ चर्च की शुरुआत हुई थी। ऐसा हो सकता है कि 60 के दशक तक चर्च अपनी दूसरी पीढ़ी में था, और अक्सर चर्च पहले उत्साहित होते हैं और फिर आप 10 या 20 साल बाद वापस जाते हैं और वे मर चुके होते हैं। हम उसे नाममात्रवाद कहते हैं, जब लोग केवल नाम के लिए ईसाई होते हैं, और वास्तव में प्रकाशित वाक्य में इफिसस के चर्च की तरह उन्होंने अपना पहला प्यार खो दिया है। तो इस तरह का परिदृश्य पादरियों को प्रशिक्षण देने की जमीनी स्तर की गतिविधि के लिए जिम्मेदार हो सकता है, जिसे पॉल ने टाइटस पर रखा है, लेकिन साथ ही चर्च में विद्रोह और धोखे की उपस्थिति भी है, जो एक तरह का इतिहास रहा है। इसलिए जब आप टाइटस को पढ़ते हैं तो यह एक तरह से जटिल होता है। क्या आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं या पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं? और इस परिदृश्य में उत्तर हाँ है। वहाँ एक रिबूट की आवश्यकता है, क्योंकि जो चर्च कुछ समय से वहाँ हैं, उनका सुसमाचार संदेश से संपर्क टूट गया है और वे सुसमाचार संदेश को जी रहे हैं। इसलिए हम क्रेते या उसके निवासियों के बारे में इतना नहीं जानते कि उनके बारे में या उनकी सांस्कृतिक सेटिंग के बारे में और अधिक कुछ कह सकें। हम टाइटस की किताब और कुछ अन्य चीजों से जो कुछ जानते हैं, जिसका मैं उल्लेख करूंगा, वह जानते हैं, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम जो जानते हैं वह यह है कि यह एक वास्तविक जगह थी। ग्रीको-रोमन दुनिया में इसकी उल्लेखनीय उपस्थिति थी, और खंडहर आज भी जीवंत कस्बों और शहरों की गवाही देते हैं जो पॉल के समय में थे। टाइटस के बारे में क्या ख्याल है? हम न्यू टेस्टामेंट से तीमुथियुस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हम न्यू टेस्टामेंट से टाइटस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। न्यू टेस्टामेंट में उनका नाम 14 बार आया है। इनमें से केवल दो ही देहाती पत्रियों में हैं। एक जब वह टाइटस 1:4 में नाम लेकर उसका स्वागत करता है और एक 2 तिमोथी 4:10 के अंत में जहां वह कहता है कि टाइटस देलमेटिया चला गया है। इन संदर्भों से संकेत मिलता है कि पॉल के जीवन के अंत में टाइटस पॉल के साथ एक सक्रिय सहकर्मी था, लेकिन पॉल के साथ उनकी भागीदारी गैलाटियंस की पुस्तक की पॉल की रचना से मिलती है, जिसे मैं सोचता हूं कि हम 40 ईस्वी के अंत में रख सकते हैं। गलातियों 2:01 में पॉल जब वह अपने रूपांतरण और अपने मंत्रालयों के बारे में बात करता है और जब वह यरूशलेम गया और यरूशलेम के स्तंभों से सम्मानित हुआ, तो वह कहता है, मैं बरनबास के साथ यरूशलेम गया और मैं तीतुस को भी साथ ले गया। यह इंगित करता है कि 47 ई के आसपास जब पॉल और बरनबास यरूशलेम में स्तंभों से मिले, तो यरूशलेम में पादरी जेम्स, पीटर और जॉन, टाइटस वहां थे। और न केवल वह वहां था, बल्कि वह पॉल के आंतरिक घेरे के इतना करीब था कि उसकी गैर यहूदी स्थिति एक मुद्दा थी। उसका खतना नहीं हुआ था। और गलातियों 2:3 में पॉल कहता है, यहां तक कि टाइटस को भी, जो मेरे साथ था, खतना करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, भले ही वह यूनानी था। गलातियों के अध्याय 2 के शुरुआती छंदों को पढ़ने से हम देखते हैं कि ऐसे झूठे विश्वासी थे जिन्होंने इधर उधर छिपकर पाया कि टाइटस का खतना नहीं हुआ था, और वे पॉल के मंत्रालय को बदनाम करना चाहते थे, क्योंकि उनके विचार में जो कोई भी यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करता था उसे यहूदी बनना चाहिए। उन्हें यथासंभव यहूदी धर्म के अनुरूप होना चाहिए, उन्हें अपना आहार बदलना चाहिए, उन्हें यहूदी लोगों की परंपराओं का पालन करना चाहिए, और पुरुषों के लिए इसका मतलब होगा कि उनका खतना किया जाना चाहिए। और पॉल और टाइटस इस दोषपूर्ण धार्मिक समझ और इस अनुचित मांग के प्रति खड़े रहे। पौलुस कहता है, हमने एक क्षण के लिए भी उनकी वश में न की, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम्हारे लिए सुरक्षित रखी जाए। और निश्चित रूप से यदि आप इसके बारे में अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप अधिनियम 15 पढ़ सकते हैं, जब यह मुद्दा सामने आया और जेम्स और पॉल और पीटर और बरनबास और यरूशलेम के चर्च सभी ने निर्णय लिया कि सुसमाचार संदेश इसके पूर्ण स्वागत ने उन लोगों से यह मांग नहीं की जो जातीय रूप से यहूदी नहीं थे कि वे खतना और यहूदी भोजन कानूनों को स्वीकार करें और उन परंपराओं का पालन करें जिनका पालन यहूदी पहली शताब्दी में कर रहे थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि यहूदियों को यहूदी होना बंद करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने कहा कि अन्य जातियों को यहूदी रीति रिवाजों, विशेष रूप से आहार और खतना में भागीदार बनने की जरूरत नहीं है, जो उस समय और अभी भी दुनिया भर में यहूदी विरासत के प्रतीक थे। इसलिए जब आप टाइटस को पढ़ते हैं तो यह दिलचस्प होता है कि इनमें से कुछ समान गतिशीलता, जैसे झूठे विश्वासियों और सुसमाचार शिक्षण के लिए यहूदी आधारित चुनौती, हम इन चीजों को टाइटस में देखने जा रहे थे, और उनका अनुमान 20 साल पहले लगभग गलाटियंस में था। अन्य नए नियम में 2 कुरिन्थियों में टाइटस क्लस्टर का संदर्भ दिया गया है, जो गैलाटियन के लेखन के लगभग 1 दशक बाद है। और टाइटस पॉल और कोरिंथियन मंडली के बीच बातचीत में गहराई से शामिल है। उनका पॉल के साथ एक चट्टानी रिश्ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पॉल झूठे प्रेरितों, सुपर प्रेषितों को बुलाते हैं जो सुसमाचार की अपनी समझ की दिशा में कोरिंथियन मंडली को अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि पॉल की सुसमाचार की समझ की दिशा में। ग्रीस और मैसेडोनिया में कई वर्षों तक पॉल के मंत्रालय का एक हिस्सा और भूमध्य सागर में रोमन साम्राज्य का केंद्रीय हिस्सा गैर यहूदी विश्वासियों के लिए था, जिनमें से कुछ बहुत अमीर नहीं थे, वास्तव में उनमें से कुछ बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया यहूदी विश्वासियों को वापस लाने के लिए एक संग्रह करना बहुत जरूरी था, जिन्हें वास्तव में संदेह था कि ये लोग ईसाई भी थे क्योंकि वे गैर यहूदी थे। और पॉल यहूदी विश्वासियों को मसीह के शरीर की एकता दिखाना चाहता है, और आप कह सकते हैं कि वह उन्हें यह दिखाकर उनके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाना चाहता है कि मसीह का शरीर उसके अन्य जाति पक्ष सहित यहूदी सदस्यों सहित शरीर के सभी सदस्यों का सम्मान करता है। तो यह था, वर्षों में पैसा बनाया गया था और अंततः पैसा यरूशलेम भेजा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से, और आप देखते हैं, यह पुष्टि करने के लिए सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए कि पैसा वहां पहुंचा, अन्य जातियों के ये विभिन्न क्षेत्र जिन चर्चों की स्थापना पॉल ने की थी, उन्होंने धन के प्रशासन की देखरेख के लिए पॉल के साथ यात्रा करने के लिए लोगों को नियुक्त किया, और फिर ये लोग वापस जा सकते थे और कह सकते थे, पैसा इसलिए मिला क्योंकि हमने पॉल के साथ यात्रा की और इसे वितरित कर दिया गया। खैर, टाइटस अंदर था, वह अंगरक्षकों और प्रतिनिधियों के इस दूत का सदस्य था। पॉल के कुरिन्थियों को लिखने और कुरिन्थियों के साथ बातचीत के दौरान टाइटस इस टीम का हिस्सा है। वह पॉल और कोरिन्थियंस के बीच आने जाने का हिस्सा है क्योंकि पॉल उसने कोरिन्थियंस को लिखा था और वह यात्रा कर रहा था और वह एक ही समय में कुछ दूरी पर चर्चों का प्रचार और स्थापना कर रहा था और कोरिन्थियंस के साथ व्यवहार कर रहा था। और यह टाइटस ही था जो कूरियर का कुछ काम आगे पीछे कर रहा था। हमने पढ़ा कि तीतुस ने पौलुस को सांत्वना दी। टाइटस, पॉल तरोताजा हैं। वह कोरिन्थियंस की प्रतिक्रिया से तरोताजा हो जाता है और टाइटस कोरिन्थियंस से संग्रह में पूर्ण भागीदारी के लिए आग्रह करने में मदद करता है। और इस सब में पॉल टाइटस को मेरा साथी और मेरा सहकर्मी कहता है। और पॉल के कुछ पत्र हैं जहां वह लिखता है, हां नहीं, उसने कभी भी पत्र के सहलेखक के रूप में टाइटस का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन फिर भी वे भागीदार और सहकर्मी हैं। तीतुस उन्हीं पदचिन्हों पर चला जो पौलुस ने किया था और उसी भावना से पौलुस भी चला। तो यह बहुत अधिक प्रशंसा है, उतनी अधिक नहीं जितनी उन्होंने टिमोथी के लिए की है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक प्रशंसा है। इसलिए संक्षेप में कहें तो, यदि टाइटस को पॉल का पत्र पॉल के जीवन के अंत में लिखा गया है, तो वह विभिन्न सेटिंग्स में मंत्रालय के अनुभव के साथ लगभग दो दशकों तक पॉलिन का सहकार्य करता था। वह कोई नौसिखिया नहीं था, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में पॉल ने सोचा था कि वह इसे व्यवहार में ला सकता है और उन संक्षिप्त टिप्पणियों का विस्तार कर सकता है जो उसके नाम से जाने वाले इस संक्षिप्त पत्र को बनाते हैं। यह हो सकता है कि वह कभी भी इस हद तक और ऊंचे दाव पर अकेला नहीं रहा हो। यह उसका सबसे बड़ा कार्यभार हो सकता था और इसलिए टाइटस की पुस्तक उन बहुत से सिद्धांतों को ठोस या स्पष्ट करती है जिनका पॉल ने उपयोग किया था और टाइटस उनके कार्यान्वयन का निरीक्षण कर रहा था, लेकिन शायद कभी भी इसके लिए पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं ली गई थी अपने ही। तो टाइटस की पुस्तक उन चीजों को रेखांकित और पुष्ट करती है जिन्हें टाइटस ने वर्षों से देखा होगा, लेकिन शायद कभी भी खुद को प्रशासित करने का प्रभारी नहीं रहा होगा। इससे पत्र की संक्षिप्तता को भी समझा जा सकता है, और मैं यहां कहता हूं कि पॉल मुहावरेदार ढंग से लिखता है। यह वही शब्दावली नहीं है जिसका उपयोग वह कुलुस्सियों या रोमनों के साथ करता है, लेकिन यह कुछ मायनों में पहले और दूसरे तीमुथियुस की तरह थोड़ा अधिक जटिल है। यह एक विशिष्ट शब्दावली है जिसका उपयोग किया जाता है, लेकिन उन्होंने और टिमोथी ने दो चीजें साझा की, एक यहूदी विरासत और साथ ही वे मूल ग्रीक भाषी थे। विशेष रूप से पॉल एक बहुत बड़ी शब्दावली के साथ एक बहुत उज्ज्वल देशी ग्रीक वक्ता थे और हम इसे एक और दो टिमोथी में देखते हैं। मुझे लगता है कि हम इसे टाइटस में भी देखते हैं और ऐसे शब्द हैं जिनका वह टाइटस में उपयोग करता है, वह अन्य अक्षरों में उपयोग नहीं करता है और मुझे लगता है कि यह उसके और टाइटस के रिश्ते को दर्शाता है और यह तथ्य भी कि वे दोनों एक ग्रीक क्षेत्र में बड़े हुए थे और जब पॉल ने यरूशलेम में प्रशिक्षण लिया तो वह वहां बड़ा नहीं हुआ, उसका जन्म वहां नहीं हुआ और यही कारण है कि उनके बीच यह स्पष्ट और संक्षिप्त आदान प्रदान होता है। यदि आपने पहले के व्याख्यान देखे हैं तो मुझे पता चलेगा कि जब नए नियम के पत्रों में आने वाले शब्दों की बात आती है तो मैं आंकड़ों का आदी हो जाता हूँ। वे जिस बारे में बात करते हैं उससे मैं प्रभावित हूँ और मुझे लगता है कि वे जिस बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं वह अक्सर पत्र के बारे में होता है, जैसे एक और दो तीमुथियुस में और वास्तव में पॉल के सभी पत्रों और अन्य नए नियम पत्रों में भी वही बात होती है। जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है वह है ईश्वर। तो यह टाइटस में प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दों का एक चार्ट है। यह महत्वपूर्ण शब्द नहीं और द लेकिन है। मुझे लगता है कि ये सभी संज्ञाएं हैं। मुझे लगता है कि एक क्रिया है, हालांकि उस क्रिया का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, लेकिन ये लगभग सभी संज्ञाएं हैं। तो आपको ईश्वर मिल गया है और फिर आपको काम या कर्म के लिए शब्द मिल गया है, जैसे कि अच्छे काम या अच्छे कार्यों में। आपके पास विश्वास है, आपके पास एक और शब्द है जो हमेशा बड़े अक्षर एस के साथ प्रयोग किया जाता है और वह है उद्धारकर्ता। फिर आपके पास मनुष्य या व्यक्ति है, आपके पास अच्छा शब्द अच्छे के लिए एक और शब्द है शिक्षण, जो कि देहाती पत्रों में चिंता का विषय है, फिर यीशु और मसीह शब्द। संख्या 8 से, यद्यपि यह 8 से 13 तक जाती है, ये सभी शब्द एक ही आवृत्ति के साथ चार बार आते हैं। जीसस चार बार हैं और क्राइस्ट चार बार हैं। और अनुग्रह भी ऐसा ही है, और संख्या 11 इस सूची में एकमात्र क्रिया है, लेकिन इसका उपयोग कृदंत रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग विशेषण रूप में किया जाता है। इसका अर्थ स्वस्थ है और इसका तात्पर्य स्वस्थ शिक्षण से है। हम इसका अनुवाद ध्वनि सिद्धांत के रूप में करते हैं। तो उस शब्द का उपयोग रूपक के रूप में उस शिक्षण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसे मजबूत या सुदृढ़ या स्वस्थ होना आवश्यक है। फिर एक अंतिम नोट, सोटर का उपयोग भगवान के लिए तीन बार किया जाता है, अर्थात उद्धारकर्ता शब्द भगवान को तीन बार संदर्भित करता है। भगवान तीन बार उद्धारकर्ता है। एक बार यह उद्धारकर्ता मसीह यीशु को संदर्भित करता है, एक बार यह यीशु मसीह को उद्धारकर्ता को संदर्भित करता है, और फिर एक संदर्भ में भगवान और यीशु मसीह दोनों को उद्धारकर्ता कहा जाता है। इसलिए सेवियर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है जो इसे थोड़ा चिह्नित करता है। यह एक और दो तीमुथियुस से भिन्न है। वह उस शब्द का उपयोग नहीं करता है, वह प्रथम द्वितीय तीमुथी शब्द का उपयोग करता है, वह बड़े पैमाने पर भगवान का उपयोग करता है, और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शब्द ग्रीक पुराने नियम में बहुत आम है और उसने और तीमुथी ने इस पुराने नियम को साझा किया है जो कि यह यहूदी विरासत है। लेकिन टाइटस एक यहूदी के रूप में बड़ा नहीं हुआ, वह एक रोमन दुनिया में बड़ा हुआ जहां उद्धारकर्ता शब्द एक ईश्वर के रूप में अधिक जुड़ा होगा जो हर चीज पर शासन करेगा और किसी तरह हर चीज को छुड़ाएगा। तो मेरे विचार से टाइटस की विरासत के कारण, बल्कि इसलिए भी कि टाइटस क्रेते में सेवा कर रहा है, पॉल प्रभु शब्द का इतना अधिक उपयोग नहीं करने जा रहा है क्योंकि वह इसका बहुत कम उपयोग करने जा रहा है। वह उद्धारकर्ता शब्द का उपयोग करने जा रहा है और इसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग कर रहा है, जिसमें वह इसे भगवान के साथ बार बार उपयोग करने जा रहा है। वह इसे यीशु या ईसा मसीह के साथ संयोजन में बार बार उपयोग करने जा रहा है, और इतना अधिक कि यह उन प्रमुख तरीकों में से एक है जिससे टाइटस यीशु की दिव्यता या यीशु मसीह की दिव्यता की पुष्टि करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसे उद्धारकर्ता कहता है और बाइबल धर्म के तर्क में आपके पास एकाधिक उद्धारकर्ता नहीं हो सकते क्योंकि ईश्वर एक है। तो यदि ईश्वर उद्धारकर्ता है और यदि यीशु उद्धारकर्ता है तो यीशु ही ईश्वर है। पॉल इन सच्चाइयों का संकेत देने के लिए उद्धारकर्ता शब्द का उपयोग करता है। अंत में जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए काम शब्द कलोस के साथ चार बार आता है जो अच्छा है। यह संदर्भित करता है कि यह अगाथोस शब्द के साथ दो बार आता है जिसका अर्थ भी अच्छा है, लेकिन कलोस का सुंदर या वांछनीय के संदर्भ में अधिक सौंदर्य संबंधी अर्थ अच्छा हो सकता है। अगाथोस का नैतिक अर्थ नैतिक रूप से थोड़ा अच्छा हो सकता है। टाइटस की अद्वितीय या लगभग अद्वितीय या कम से कम विशिष्ट विशेषताओं में से एक अंतिम परिचयात्मक अवलोकन प्रिस्क्रिप्ट में है कि सभी पॉलीन पत्र उसके नाम से शुरू होते हैं। फिर किसी प्रकार का अभिवादन होता है और फिर आप प्राप्तकर्ता को सूचीबद्ध कर लेते हैं। यह हेलेनिस्टिक पत्रों में एक सम्मेलन था, हालांकि पॉल ने इस सम्मेलन के अपने उपयोग को अनुकूलित किया, लेकिन बाएं हाथ के कॉलम में रोमन से शुरू होकर और विहित क्रम से गुजरते हुए आप हर पॉलीन पत्र की शुरुआत देखते हैं। ग्रीक में पॉलोस, हर पॉलीन पत्र इस तरह से शुरू होता है और टाइटस कोई अपवाद नहीं है। हैगियोस या हैगियोई संत होंगे, लेकिन एनआईवी इसका अनुवाद पवित्र लोग करता है जो अनुवाद के रूप में ठीक है। तीमुथियुस के लिए यह विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, एक तीमुथियुस और दो तीमुथियुस मेरा प्रिय पुत्र है। फिर टाइटस के पास हमारे सामान्य विश्वास में मेरा सच्चा बेटा। फिर हमारे प्रिय मित्र और सहकर्मी फिलेमोन का एक और उदाहरण दीजिए। तो आपको चर्च समूह के लोगों के लिए पॉल मिल गया है, लेकिन आइए पॉल के नाम और पते वाले के बीच ग्रीक शब्दों की संख्या गिने और यहीं पर टाइटस खड़ा होता है। यदि आप पॉल और टिमोथी के बीच टिमोथी पत्रों को देखते हैं तो आपको 14 ग्रीक मिलते हैं, शब्द दो टिमोथी आपके पास 13 ग्रीक शब्द हैं। जब वह थिस्सलुनीकियों को लिखता है तो आपको पॉल और थिस्सलुनीकियों के बीच केवल 4 शब्द मिलते हैं, लेकिन रोमन में आपको 71 शब्द मिलते हैं। यदि आप रोमियो की पुस्तक को देखें तो आप देखेंगे कि यह पॉल है। फिर 6 या 7 छंद बाद में रोमनों के लिए और उसके नाम और रोमनों के बीच लगभग एक व्यवस्थित धर्मशास्त्र है। गलातियों की पुस्तक में पॉल और गलातियों के बीच 25 शब्दों का थोड़ा विस्तार भी है, लेकिन टाइटस 46 शब्द कहता है जो उसके नाम से लेकर टाइटस को लिखते समय तक बहुत कुछ कहता है। इसलिए हम इन शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहते हैं क्योंकि वे पॉल के पत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और किसी को संदेह है कि यहाँ बहुत सारी जानकारी है जिसे पॉल टाइटस को लिखते समय सुदृढ़ करना चाहता है और शायद यह भी कि वह क्रेते के चर्चों में प्रबलित होना चाहता है। वह चाहता है कि टाइटस इसे ले ले और अगर ऐसी कोई संभावना है कि इसे कॉपी करके भेजा गया था या इसे टाइटस को भेजा गया था और टाइटस ने इसका इस्तेमाल वहां के सदस्यों या वहां के नेताओं को निर्देश देने में किया होगा। उस स्थिति में क्रेते में टाइटस के स्वयं के नेतृत्व प्रशिक्षण के उपयोग के लिए पत्र की शुरुआत में यह अतिरिक्त धार्मिक पंच होगा। तो हम टाइटस अध्याय 1 पर आते हैं और मैंने अध्याय की शुरुआत को हरे रंग से चिह्नित किया है। शीर्षकों के संदर्भ में एक टिमोथी और दो टिमोथी की तरह इस व्याख्यान में भी एक शीर्षक खुलता है और मैं एनआईवी में शीर्षकों का अनुसरण कर रहा हूँ। एनआईवी में शीर्षकों के बारे में एक बात जो विशिष्ट है वह यह है कि जब आप शुरुआत से आगे निकल जाते हैं तब तक सभी शीर्षकों में अच्छा शब्द होता है जब तक कि आप अंतिम टिप्पणी पर नहीं पहुंच जाते। इसलिए आपने ऐसे प्राचीनों को नियुक्त किया है जो अच्छी चीजों से प्यार करते हैं और जो अच्छा करने में विफल रहते हैं उन्हें डांटते हैं। जब हम सुसमाचार के लिए अच्छा करते हुए अध्याय 2 पर पहुंचते हैं और अच्छा करने के लिए अध्याय 3 को बचाया जाता है। इसलिए इसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं और जैसे जैसे हम पत्र के माध्यम से आगे बढ़ेंगे हम विवरण देखेंगे। पॉल ईश्वर का सेवक है और मैं उन शब्दों को पीला करता हूँ जो सीधे ईश्वर को संदर्भित करते हैं, क्योंकि उद्धारकर्ता टाइटस की बयानबाजी का एक हिस्सा है। मैं उद्धारकर्ता शब्द को भी पीला कर रहा हूँ और जब यह बड़े अक्षरों में लिखा हो। निःसंदेह इसका तात्पर्य बिल्कुल ईश्वर या ईसा मसीह से है और इसे हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। टाइटस की पुस्तक में पौलुस ईश्वर का सेवक और यीशु मसीह का एक प्रेरित है जो ईश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य के बारे में उनके ज्ञान को आगे बढ़ाता है, जो भक्ति की ओर ले जाता है। मैं एक मिनट में रेखांकित बात समझाऊंगा। अनंत जीवन की आशा में परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता, वह जो झूठ नहीं बोल सकता भी हो सकता है। यह वस्तुतः झूठ न बोलने वाला ईश्वर है, वह ईश्वर जो धोखा नहीं देता। उन्होंने समय की शुरुआत से पहले अनंत जीवन का वादा किया था, जिसका उन्होंने समय की शुरुआत से पहले वादा किया था और जिसे अब अपने नियत समय पर सही समय पर उन्होंने हमारे उद्धारकर्ता भगवान की आज्ञा से मुझे सौंपे गए उपदेश के माध्यम से प्रकाश में लाया है। टाइटस के लिए हमारे सामान्य विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र परमपिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति। तो यहाँ शब्दों के बारे में बस कुछ टिप्पणियां हैं। पॉल भगवान का सेवक है। यह एक और दो तीमुथियुस से भिन्न है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि वह यहाँ खुद को सेवक क्यों बताता है, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि वह एक प्रेरित भी है। यह बस हो सकता है कि उस दिन पॉल यह कहना चाहता था कि वह एक डोलोस और एक एपोस्टोलोस था। जैसा कि मैंने पहले व्याख्यानों में बताया था, उन्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। हम प्रेरितों का बहुत आदर करते हैं, परंतु समाज में उनका आदर नहीं किया जाता। यह तथ्य कि चर्च में भी उनका इतनी बार और इतने खुलेआम विरोध किया गया, यह याद दिलाता है कि चर्च के पहले दशकों में चीजें अभी तक स्थापित नहीं हुई थीं। यह अभी तक स्पष्ट नहीं था कि चर्च का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, और जैसे आज चर्चों में कई बार सत्ता संघर्ष होता है, वैसे ही शुरुआती चर्चों में भी बहुत तीव्र सत्ता संघर्ष थे। मैंने कुछ मिनट पहले अधिनियम 15 में और यरूशलेम में परिषद में उल्लेख किया था कि प्रारंभिक चर्च के अस्तित्व में 20 साल हो गए हैं और वे अभी भी इस बात पर बहुत तीव्र संघर्ष का अनुभव कर रहे हैं कि क्या लोगों को ईसाई माने जाने के लिए यहूदी बनने की आवश्यकता है या नहीं। वह एक पूरी पीढ़ी है। चूंकि उन्होंने अधिनियम 15 में यह निर्णय लिया था और चूंकि अब हमारे पास लगभग 2000 वर्षों का चर्च इतिहास है, हम प्रारंभिक चर्च की बढ़ती पीड़ाओं और उन संघर्षों के बारे में नहीं सोचते हैं जिनसे प्रारंभिक चर्च गुजरा था। जब हम किसी संभावना के बारे में सोचते हैं, तो हम किसी के बारे में सोचते हैं कि वे सही हैं और वे सच्चे हैं और भगवान यीशु ने उन्हें चुना है, या पॉल क्राइस्ट उन्हें दमिश्क रोड पर दिखाई दिए। यह एक उत्कृष्ट शब्द है। लेकिन प्राचीन दुनिया में प्रेरित तब जूरी इस बात पर अड़े थे कि उनके नाम का सम्मान किया जाएगा या मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पत्रियों में कई स्थानों पर हम देखते हैं कि उनका विरोध किया गया है। तो उस समय उन पर कीचड़ उछाला जा रहा था। तो प्रेरित सेवक थे, वे मसीह के सेवक थे, वे वचन के सेवक थे, वे मंडलियों के सेवक थे, वे एक खोई हुई दुनिया के सेवक थे जिन्होंने इस बात की सराहना नहीं की कि भगवान उनकी भलाई के लिए उन तक पहुंच रहे थे। प्रेरितों की सेवक स्थिति की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि वस्तुतः उनमें से सभी शहीद हो गए थे। हमें लगता है कि प्रेरित जॉन की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई, लेकिन हमें लगता है कि बाकी सभी शहीद हो गए। कई मामलों में हम ऐतिहासिक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। मैं बस एक मिनट में रेखांकित पर आऊंगा, लेकिन वह एक प्रेरित है और वह एक सेवक है। वह उनके विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए लिख रहा है और वह शाश्वत जीवन के निश्चित ज्ञान में लिख रहा है। मेरा मतलब है कि यहाँ आशा शब्द का यही अर्थ है, क्योंकि भगवान जो वादा करता है कि वह करने जा रहा है, वह कहता है कि उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। हमें एक आशा है, परंतु यह आशा उस व्यक्ति के कारण सुरक्षित है जिसने प्रतिज्ञा की है। वह अनंत जीवन की आशा में लिख रहा है, जिसका वादा परमेश्वर ने समय की शुरुआत से पहले किया था और जो अब पूरा हो गया है। समय आने पर वह उस वादे को प्रकाश में लाया और उसने इसे सुसमाचार के प्रचार के माध्यम से किया। अब बेशक मसीह को प्रचार करने के लिए आना पड़ा, लेकिन यहाँ वह रुककर अवतार के बारे में बात नहीं करते। वह मानता है कि मसीह आए हैं, मसीह आए हैं, मसीह आए हैं, पुनर्जीवित मसीह पिता के दाहिनी ओर पुत्र हैं। वह बाद में मसीह की वापसी का उल्लेख करेगा, लेकिन मसीह के आगमन ने मसीह का प्रचार करना संभव बना दिया है और वह उपदेश मुझे सौंपा गया था। पॉल कहते हैं, और उनके पास अन्य जातियों की दुनिया के लिए एक विशेष प्रभार है। टाइटस एक अन्य जाति है और क्रेते एक अन्य जाति क्षेत्र है। यह सब हमारे उद्धारकर्ता भगवान की आज्ञा से है, इसलिए यहाँ भगवान के बारे में बहुत कुछ है। यहाँ ईश्वर की निष्ठा के बारे में, ईश्वर की सत्यनिष्ठा के बारे में, ईश्वर की योजना के बारे में, सुसमाचार को स्वीकार करने के प्रतिफल के बारे में, अर्थात शाश्वत जीवन के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में और गैर यहूदी दुनिया में सुसमाचार कैसे पहुँचा, इसके बारे में बहुत कुछ है। यह प्रेरितों की नियुक्ति के माध्यम से है। एक प्रेरित क्या था? खैर, वे नौकर थे। इन 46 ग्रीक शब्दों में बहुत सारी जानकारी है, और जब वह टाइटस से कहता है कि मेरा सच्चा बेटा, तो यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसा वह इसे टिमोथी से जोड़ने के लिए कहता है। मुझे लगता है कि यह उन निकटता को इंगित करता है जो उनके बीच थी, वह बंधन जो उनके बीच था, क्योंकि वे एक समान विश्वास साझा करते थे। यह वाचा की भाषा है, ईश्वर में विश्वास की पुष्टि है जिसने बहुत पहले दुनिया की रचना की थी। फिर मनुष्य के पतन के बाद और जलप्रलय इत्यादि के बाद उसने इब्राहीम से वादा किया कि इब्राहीम में दुनिया की सभी जातियां धन्य होंगी। विशेष रूप से रोमियो 4 जैसी जगह में पॉल इब्राहीम विरासत को उजागर करता है और कैसे इब्राहीम उन सभी विश्वास करने वालों का पिता है। वह गैलाटियंस में वही बात कहता है जिसमें टाइटस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया के लिए सुसमाचार के इस संदेश से संबंधित है, लेकिन अन्य जातियों सहित। पॉल कहते हैं कि हम विश्वास से इब्राहीम की संतान हैं, यह हमारा सामान्य विश्वास है। यह पॉल का है जो एक यहूदी है। यह टाइटस है जो एक अन्य जाति है। यह युगों युगों से परमेश्वर के सभी लोगों का विश्वास है और यह मसीह में पूरा हुआ। परमेश्वर का वादा मसीह में पूरा हुआ। इसलिए पॉल लिख सकता है और इच्छा कर सकता है और कर सकता है, आप कह सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। वह अनुग्रह और शांति प्रदान कर सकता है क्योंकि यह चढ़ावे के लिए है और यह लेने के लिए है क्योंकि भगवान ने इसे प्रदान किया है। परमपिता परमेश्वर ने इसे प्रदान किया है और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने इसे जीत लिया है। और इसलिए आप लगभग बस यही कह सकते हैं कि यह एक पत्र है क्योंकि इसमें बहुत आशा है, इतना धर्मशास्त्र है, उस संदेश की पूर्णता की इतनी पुष्टि है जो दुनिया को मुक्ति दिलाती है। लेकिन इससे पहले कि हम अंतर्निहित शब्दों के संबंध में दूसरे खंड में जाएं, मैं ईश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और सत्य के बारे में उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के इस विचार में गहराई से उतरना चाहता हूँ जो ईश्वरत्व की ओर ले जाता है। ये पॉल के सेवकत्व और प्रेरितत्व के दो लक्ष्य हैं। पहला है ईश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास को आगे बढ़ाना। पॉल ने हमें 2 तीमुथियुस में पहले ही बताया है कि वह चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता है। उन्होंने अपने मंत्रालय पर पीछे मुड़कर देखा है। यह पॉल की व्याख्या करने का एक तरीका है। आपने अपने जीवन के साथ क्या किया है? खैर, मैंने चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहा है ताकि वे भी शाश्वत महिमा के साथ मसीह यीशु में मोक्ष प्राप्त कर सकें। पॉल विश्वासियों को इसी शब्द से चुने हुए कहता है, जैसा कि रोमियो 8:33 और कुलुस्सियों 3:12 में है, जहां इसका अनुवाद उन लोगों के रूप में किया गया है जिन्हें ईश्वर ने चुना है। इस पदनाम में इब्राहिम की बुलाहट और उसके वंशजों की बुलाहट के माध्यम से मुक्ति प्राप्त लोगों की ईश्वर की संप्रभु और दयालु पसंद में प्राचीन आधार है। हम इसके बारे में उत्पत्ति 12 में पढ़ सकते हैं और फिर रोमियो 9:11 में भी। पॉल इस भाषा और लोगों की इस स्थिति की पुष्टि करता है। यीशु ने अपने अनुयायियों को यीशु के समय में भी इसी प्रकार बुलाया था। रब्बियों ने अनुयायियों को नहीं बुलाया और खुद को संलग्न कर लिया। लेकिन नए नियम में हम पढ़ते हैं कि यीशु एक रात पूरी रात जागकर प्रार्थना करता रहा और फिर अगले दिन जब वह उठा तो उसने 12 को बुलाया। उसने उन्हें नियुक्त किया, यह कहता है कि उन्हें उसके साथ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यह उस चीज का प्रतीक है जो ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों के बारे में बिल्कुल सच है। भगवान पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि उन्हें उसके साथ सहभागिता और उसकी सेवा और उसकी पूजा के लिए तैयार करने के लिए तैयार करें। उन्होंने अपने अनुयायियों को निर्वाचित और व्यापक बाइबल परिप्रेक्ष्य में कहा। ऐसी कुछ अवधारणाएं हैं जो ईश्वर द्वारा चुने जाने की तुलना में ईश्वर के लोगों की पहचान के लिए अधिक बुनियादी हैं, चाहे आप इसराइल के बारे में बात करें या चाहे आप अब्राहम के बारे में बात करें। ये सभी लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान प्रकट होते हैं और आप बस अपनी उंगलियां चटका कर यह नहीं कह सकते कि ठीक है भगवान, मैं यहाँ हूँ। आप दीपक को रगड़ नहीं सकते और वहाँ भगवान हैं। विशेषकर प्राचीन विश्व में जहाँ बहुत अधिक भ्रष्टाचार था और लोग अनेक देवताओं में विश्वास करते थे, इब्राहिम का परमेश्वर किसी तरह इब्राहिम के पास आया और हम इसका हिसाब नहीं दे सकते सिवाय इसके कि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर वही करता है जो वह करना चाहता है। टाइटस में पॉल जो कुछ भी लिखता है वह ईश्वर के लोग होने की इस पहचान को विस्तारित और मजबूत करने वाला है। पॉल की सेवकाई और उसकी प्रेरिताई का दूसरा लक्ष्य सत्य के उनके ज्ञान से संबंधित है जो भक्ति की ओर ले जाता है। वे ईश्वर के चुने हुए लोगों का उल्लेख कर रहे हैं। इस ज्ञान को ईश्वरीयता के अनुरूप समझा जा सकता है। यह ईश्वर का अस्पष्ट ज्ञान नहीं है। यह कोई आकस्मिक धर्मप्रायणता नहीं है। ठीक है, मैं ईश्वर को जानता हूँ और फिर मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊंगा। इसका एक आदर्श है और यह ईश्वरत्व हम पहले ही 1 तीमुथियुस और 2 तीमुथियुस में बहुत कुछ देख चुके हैं। लगभग उसी समय 2 पीटर में पीटर अपने पाठकों को चरित्र की उसी गुणवत्ता के लिए प्रेरित कर रहा है। यह एक ईश्वरीय भक्ति है जो व्यावहारिक रूप से व्यक्त होती है। यह ईश्वर के ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में जीना है। मैंने देखा है कि ईश्वर का ज्ञान औपचारिक हो सकता है। यह अमूर्त दृढ़ विश्वास में बदल सकता है। यह मानसिक रूप से उत्तेजक हो सकता है लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं बदल सकता। लेकिन इस सैद्धांतिक ज्ञान या काल्पनिक ज्ञान के विपरीत पॉल 2 तीमुथियुस में इस बारे में बात करता है, लोग हमेशा सीखते रहते हैं लेकिन कभी भी सत्य का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं। पॉल सत्य का ज्ञान देता है जो उसके पाठकों के रोजमर्रा के धार्मिक स्वभाव और वे अपने रोजमर्रा के मामलों को कैसे संचालित करते हैं, अपने रिश्तों को कैसे संचालित करते हैं और कैसे कार्य करते हैं के लिए एक अंतर बनाता है। पत्र की शुरुआत में यह व्यावहारिक जोर पत्र में बाद के कार्यों पर पॉल के जोर देने का मार्ग प्रशस्त करता है। और मुझे लगता है कि पॉल सत्य का उपयोग इस तरह से कर रहा है जो उसकी प्रेरितिक स्थिति और उसके प्रेरितिक संदेश के विरोधियों के प्रति एक विवादास्पद या क्षमा प्रार्थी रुख का पूर्वाभास देता है। वह सत्य को आगे बढ़ाने के लिए लिख रहा है और वह टाइटस को लिख रहा है जो अर्धसत्य और असत्य के दलदल में है, जिसे उसे संबोधित करने की आवश्यकता है। हम इस अगले भाग में शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं और उन प्राचीनों को नियुक्त कर सकते हैं जो अच्छी चीजों से प्रेम करते हैं। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें क्रेते में इसलिए छोड़ दिया कि जो कुछ अधूरा रह गया था उसे तुम सुधारो और मेरी आज्ञा के अनुसार हर नगर में पुरनियों को नियुक्त करो। अब यहाँ कुछ योग्यताएं दी गई हैं। एक बुजुर्ग को अपनी पत्नी के प्रति निर्दोष और वफादार होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बच्चे विश्वास करते हैं और जंगली और अवज्ञाकारी होने के आरोप के लिए तैयार नहीं हैं। याद रखें कि ये घरेलू चर्च हैं। लोग ईसाई परिवारों को किसी के घर में इकट्ठा करते हैं और इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि एक व्यक्ति ने ईसाई विवाह किया हो और माता पिता का धर्म एक पर्यवेक्षक के रूप में बच्चों के साथ साझा किया गया हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के पर्यवेक्षक एक बुजुर्ग का उपयोग उसी तरह किया जा रहा है जैसे भगवान के घर का प्रबंधन करता है। वह निर्दोष होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, नशे में नहीं होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए, बेईमानी से लाभ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उसे पहुनाई करने वाला, भलाई से प्रेम करने वाला, संयमी, सीधा, पवित्र और अनुशासित होना चाहिए। उसे विश्वासयोग्य संदेश को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहना चाहिए जैसा कि सिखाया गया है, ताकि वह खरी शिक्षा या खरी शिक्षा के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित कर सके और उन लोगों का खंडन कर सके जो इसका विरोध करते हैं। तो यह एक संक्षिप्त विवरण है, व्यक्ति के प्रकार और गुणवत्ता का एक बहुत ही छोटा सा लक्षण वर्णन। चूंकि यह अपनी पत्नी के प्रति वफादार कहता है, यह स्पष्ट है कि वह मान रहा है कि यह एक पुरुष है, यह एक आदमी है, उस व्यक्ति की गुणवत्ता जिस पर टाइटस को नजर रखने की जरूरत है और सेल समूहों में नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करने के लिए जोर देने की जरूरत है। छोटे समूह जो क्रेते में स्थापित किए गए थे, जो चर्च बनने की दिशा में बढ़ रहे थे। अब यहाँ हर शब्द के प्रत्येक खंड को हम तोड़ सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बुजुर्ग के निर्दोष होने के इस विचार को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव से जानता हूँ कि बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, इसका क्या मतलब है। जब चर्च चर्चा कर रहे हों तो हमें किसे बुलाना चाहिए? कुछ चर्च इन्हें उपयाजकों के लिए उपयोग करते हैं, अन्य इन्हें केवल पादरियों के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से किसी भी चर्च में ईश्वरीय नेतृत्व के लिए योग्यताएं हैं। निर्दोष होने का क्या मतलब है? कुछ लोग कहेंगे, मैं मंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मैं निर्दोष नहीं हूं। तो आइए गहराई से जानें और पूछें कि इसका क्या मतलब है, और ध्यान दें कि पॉल इसे पद 7 में दोहराता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। खैर, इस शब्द का अर्थ पाप रहित या नैतिक रूप से परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि पॉल जानता है कि हम सभी पाप करते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो हम इतना जानते हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी की नज़र में इसका मतलब शायद ही एक अद्भुत व्यक्ति हो सकता है जो गलत काम करने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता है, ऐसा एक टिप्पणीकार सोचता है। इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसके जीवन में गलत काम करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। यह यीशु की शिक्षा के विरुद्ध होगा कि उनके अनुयायियों को नापसंद किया जाएगा और कम से कम कुछ लोगों द्वारा उनका विरोध किया जाएगा। जब हर कोई तुम्हारे बारे में भला बोलता है तो यीशु तुम पर धिक्कार कहते हैं, और पौलुस भी तीमुथियुस से यही बात कहता है। उनका कहना है कि जो कोई भी मसीह यीशु में ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है उसे सताया जाएगा। उत्पीड़न का अर्थ है गलत काम करना या गलत काम का आरोप लगाना और निर्दोष को पूर्ण के रूप में परिभाषित करना, और हर कोई सोचता है कि कटी हुई रोटी के बाद से आप सबसे महान हैं। यह पत्र की धारणा के विपरीत होगा, क्योंकि यह पत्र वास्तव में उन लोगों की समस्या को संबोधित करता है जो प्रेरितिक विश्वास और अभ्यास से भटक रहे हैं, और जो लोग पॉल और टाइटस के विचारों से भटक रहे हैं। जाहिर है कोई भी पॉल और टाइटस को निर्दोष नहीं मानेगा, क्योंकि वे उनके खिलाफ हैं। वे अपने विश्वासों के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। वे आश्वस्त बुतपरस्तों और आश्वस्त यहूदियों के लिए अलग अलग विचार और प्रथाएं चाहते हैं। पॉल के सुसमाचार का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्दोष नहीं माना जा सकता। लेकिन नए नियम के दो अन्य अनुच्छेद हैं जो इस शब्द का उपयोग करते हैं, और वे हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले एक कुरिन्थियों में पौलुस कुरिन्थियों से कहता है कि यीशु मसीह तुम्हें अंत तक स्थिर रखेगा, ताकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष रहोगे। पॉल यह नहीं कह रहा है कि कुरिन्थियन पूर्ण हैं या कि वे अंत कुछ ऐसे होंगे जो वे अभी नहीं हैं, क्योंकि वे जो हैं वही हैं। एक कुरिन्थियों एक पत्र है जो कुरिन्थियों पर सवाल उठाता है, आप कह सकते हैं, उन्हें कई त्रुटियों के लिए दोषी ठहराता है। लेकिन वह कह रहा है कि मसीह में विश्वासियों के रूप में उन्हें सुसमाचार की कृपा प्राप्त हुई है, और उनके पास विश्वास के माध्यम से धार्मिकता है, और विश्वास के माध्यम से यह धार्मिकता उन्हें भगवान की वर्तमान मुक्ति का आश्वासन देती है। भले ही वे संघर्ष कर रहे हों और कुछ मामलों में उल्लंघन कर रहे हों, वे पहले से ही संत हैं। मसीह की मृत्यु की पर्याप्तता के आधार पर वे परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं। इसी तरह उनके लिए पॉल ने कुलुस्सियों से कहा कि ईश्वर ने आपको मृत्यु के माध्यम से मसीह के भौतिक शरीर के साथ मिला दिया है, ताकि आप अपनी दृष्टि में बिना किसी दोष के पवित्र और आरोप से मुक्त हो सकें। वहां वह शब्द है दोषरहित। पॉल कुलुस्सियों के बारे में यह नहीं कह रहा है कि वे पापरहित हैं। वह यह भी नहीं कह रहा है कि वे आलोचना से ऊपर हैं और वे कैसे रहते हैं, क्योंकि पॉल उनकी आलोचना करता है। परंतु वह मसीह यीशु में उनके विश्वास के आधार पर परमेश्वर की दृष्टि में उनके खड़े होने की बात कर रहा है। वे ईश्वर के सभी लोगों से प्यार करते हैं, उन्हें सुसमाचार संदेश मिला है, और यह उन्हें बदल रहा है, और ईश्वर के वचन का यह कार्य उन्हें ईश्वर की दृष्टि में निर्दोषता का दर्जा प्रदान करता है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक देहाती उम्मीदवार के रूप में निर्दोष होने का मतलब वर्तमान में इस तरह से जीना है जो कि सुसमाचार की कृपा उन लोगों को प्रदान करती है जो विश्वास करते हैं और इसे प्राप्त करते हैं। आप एक ईसाई तरीके से सुसमाचार प्राप्त कर रहे हैं और इसे जी रहे हैं। एक कुरिन्थियों और कुलुस्सियों दोनों नैतिक शिक्षाओं से भरे हुए हैं, जिसका अर्थ है कि पाठकों को धार्मिक रूप से निर्दोष स्थिति को व्यावहारिक रूप से कैसे प्रकट करना चाहिए, और पॉल इसी तरह टाइटस को बता रहे हैं कि देहाती उम्मीदवारों को मजबूत संकेत प्रदर्शित करने चाहिए दैवीय कृपा की उपस्थिति जो जीवन को ईश्वरीय दिशाओं में बदल देती है। हम इसे ईश्वरीय रूप से प्रतिबद्ध और सच्चे विश्वास और फलदायी अभ्यास में बढ़ते हुए कहकर सारांशित कर सकते हैं। अगर हम मसीह पर भरोसा कर रहे हैं, अगर हम दिन ब दिन अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप और सुसमाचार और फलदायिता में वृद्धि और उसका अनुसरण कर रहे हैं, तब शैतान हमारे बारे में वह सब कह सकता है जो वह चाहता है, और जो लोग ईसाइयों को पसंद नहीं करते हैं वे हमारी और अन्य लोगों की आलोचना कर सकते हैं, शायद चर्च में भी जो ईर्ष्यालु हैं या जो हमें पसंद नहीं करते हैं। किसी कारण से मेरा मतलब है कि यदि आपके पास एक बहुत बड़ा चर्च है तो आपके पास ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, क्योंकि लोग यही करते हैं कि वे दूसरे लोगों को तिरछी नज़र से देखते हैं और अच्छा सोचते हैं, मैं उतना बुरा नहीं हूँ या मुझे यह मंजूर नहीं है कि वे अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं या मुझे उनका बाइबल अनुवाद पसंद नहीं है। मुझे यह पसंद नहीं है कि वे इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं। मुझे यह पसंद नहीं है कि वे इलेक्ट्रिक कार नहीं चला रहे हैं। यहाँ सभी प्रकार के तरीके हैं जिनसे लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीति यहाँ धार्मिक रूप से बात कर रही है और वह टाइटस से कह रहा है। टाइटस उन लोगों की तलाश करता है जो मसीह में चल रहे हैं और फिर वह कैसा दिखता है। वह कई अन्य संकेतक देता है, जैसे कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति वफादार होना और शराबी नहीं होना, और इस तरह की सभी चीजें हमें यह देखने में मदद करती हैं कि व्यावहारिक जीवन में दोषहीनता कैसे प्रकट होती है। खैर, यह व्याख्यान काफी समय तक चला है और हमने इसमें बहुत सारी परिचयात्मक सामग्री शामिल की है। मुझे लगता है कि हम जो करने जा रहे हैं वह अभी रुकना है और फिर हम अपने अगले व्याख्यान में अध्याय एक के बाकी हिस्सों को उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे और अध्याय दो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। ये है डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रॉ देहाती पत्रियों पर अपने शिक्षण में देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश। यह सत्र 12 है, टाइटस का परिचय, टाइटस 1।